और ये
किस चीज का गुलर का
गुलर।
और यहाँ पर एक और मोटा सा पेड़ था, वो पेड़ देखते हैं कि अंतर ध्यान हो गया है।
ये कृष्ण के लीला के समय के हैं।
ये भट्ट को कहते हैं बलदेव भट्ट, राम भट्ट, और पीछे से इसका नाम है नित्यानंद भट्ट। नित्यानंद प्रभु यहाँ आए तो भाव में अभिष्ट हो गए बलदेव जी के, और इस पेड़ के नीचे बैठे, गाय उनको चाटने लगी, और सब लीलाओं की स्मृति उनकी यहाँ पर हुई थी। नित्यानंद भाव अभिष्ट हो गए, कन्हैया कन्हैया कहने लग गए। बिगन टू वेप हियर एंड बिगन इन मोर ऑफ बलदेव प्रभु एंड बिगन टू कॉल कन्हाई कन्हाई, वेयर इज कन्हाई 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 का। सो इट इज कॉल्ड राम भट्ट Nityananda Bhatt also. This tree has seen Krishna pastimes. इस पेड़ ने राम जी का यहाँ रास हुआ था वो देखा है इस पेड़ ने। ये पेड़ क्या है? ये कृष्ण का सखा है, बलदेव जी का, राम का ये सखा है, और साक्षी है जो बलदेव जी ने यहाँ पर रास किया था। You understand? This is called Ram Bhatt. Nityanand Prabhu also came here, and when he came on the descent of this tree, Ram Bhatt, he became faint here. All pastimes appeared in his heart, and he began to cry, oh Kanai, where you are? Nichi mein nadi beh rahi hai, Jamuna nadi, aur yahan par jab ras kiya Baldev Prabhu ji ne, जब रास किया तो वहां पर बलदेव प्रभु जी की जो सखियां थी वो केवल, और वो भी सखियां थी कृष्ण जैसे रास करते हैं वैसे इनका नहीं, इनका रास हुआ था गोपियों को भुलाने के लिए जो कृष्ण का विरह इनमें कम हो जाए, बस इसलिए। इसलिए कृष्ण के प्रियाओं के साथ में वो रास सब बलदेव प्रभु जी नहीं करते हैं, उनको भुलाने के लिए, चित्त को जो वो कृष्ण को भूल जाएं। किंतु वो भूल नहीं गई, क्या हुआ, कृष्ण की स्मृति और बढ़ गई, वो भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी स्मृति बढ़ती चली गई। यहीं पर उन्होंने रास किया था, रास में 2 महीने यहां पर थे, यहां पर नहीं थे, मैंने ब्रज में थे, जिसमें कि यहां पर कुछ दिन रहे, और यहीं पर गंगा जमुना जी को कहा जैसे तुम भी आ जाओ, गोपियों को प्यास लगी है, इसमें स्नान करेंगी और यहाँ पर हम लोग क्रीड़ा करेंगे, तो जमुना जी नहीं आई, वो लजा करके रह गई, कृष्ण की प्रिया है ना, तो लजा करके रह गई। तब उन्होंने हल लिया, और हल से वो उधर से जा रही, उधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं, उन्होंने हल से खींचा और खंच करके एकदम उधर में ले आया राज, जहां पर रास हो रही थी। इसलिए जमुना जी उधर से उधर नहीं गए, उधर से जा करके वैसे और फिर इधर में घूम गए। इसलिए आज भी 5000 वर्ष हो गया, जमुना जी साक्षी हैं, बलदेव जी ने उनको खींच करके, पासी में उझान एक गांव है, उझान माने उल्टा बहना, और वो उल्टा बहने लगी, जाना चाहिए इधर और उधर जाकर के फिर इधर में आ गई। इसलिए उझान नाम का एक नगर है, वहां छोटा सा गांव है, वहीं से ये लौट करके आ रहे। उन्होंने जमुना जी को, कौन जमुना जी को लिया, जमुना जी 3 है, एक तो विशाखा जी ही जमुना है मोल, और उनकी और एक प्रकाश है ये जमुना जी, फिर जमुना जी 2, एक समुद्र की जो पत्नी है वो जमुना जी, और एक कृष्ण की जो प्रिया है
सूर्य पुत्री
जो जमुना है वो तो जमुना जी है,
और कलिंद तनया
वही समुद्र में जा रही है,
कलिंद पर्वत से निकली है,
निकल कर
कलिंद नंदिनी,
तो उनको जब आकर्षण किया तो उनको आकर्षण किया जो समुद्र पत्नी है, कृष्ण प्रिया जमुना जी को नहीं, तो वही निकल करके आई और उनको जो कुछ काना का करके फिर गोपियों ने वहां पर राश किया और पानी पिया, स्नान किया, क्रीड़ा किया। तो वो स्थान बलदेव जी का है, बलदेव जी का बहुत प्रिय स्थान है। जय राम घाट जय, हम लोग प्रतिदिन इसको गाते हैं। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पर मंदिर दर्शन करेंगे, पहले हम लोग आचमन कराए महात्मा जी के, हम लोग आज शरण में आए हैं। तो अभी हम लोग यमुना में चलिए, यमुना में जो दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से हम आकर के और तब मंदिर में चलेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे। पहले चलिए हम लोग यमुना में आचमन कराए, यमुना में आचमन करा करके खेलन बन में आए। क्या कहते इसको, खेलन बन में हम लोग आए हैं। खेलन बन मने इसको, इसका नाम अब हो गया है जिसको हम पीछे छोड़ करके साथ आए, उसका नाम है शेरगढ़। तो शेरगढ़ मैंने जैसे बिलासगढ़ है, मानगढ़ है, तो वैसे ये शेरगढ़, ये शेरगढ़ नहीं है बल्कि बीच का एक अक्षर निकल गया है। जबकि कंपोज करते हैं ना तो कभी कभी बीच का अक्षर गिर जाता है, तो ये ख नीचे गिर गया था, तो क्या हो गया ये
खर।
तो ये शेखर गोप का वो स्थान है, उसमें आधुनिक भाषा में 5000 वर्ष में एक बीच का अक्षर जो था वो गिर पड़ा है, इसलिए आप लोग शेरगढ़ शेरगढ़ जल्दी में कहते हैं। किंतु वो शेखर वो नंदा बाबा के कुछ रिलेटिव लगते थे, संबंधी लगते थे, इसलिए नंदा बाबा जब वहां से गोकुल से वृंदावन में पधारे छठी करा इत्यादि, तो वहां से आकर के फिर यहां पर कुछ दिन थे। पासी में भय गांव है, वहां पर भी कुछ दिन थे, वो भी गोकुल है, नंद गोकुल है। ये भी यहां पर जो खेलन बन जो कहा शेखरगढ़, शेखरगढ़ माने कृष्ण के विलास का ये भी गढ़ है। ये खेलन बन इसलिए इसका नाम पड़ा कि खेलते थे, पहले सखाओं के साथ में नहीं खेलते थे, पहले बच्चा बच्ची सभी मिल करके नंगे हो करके जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो वैसे ये सब सखा सखी सभी छोटे छोटे अभी 3-4 वर्ष के, 2.5 वर्ष के तो नहीं, तो 3 वर्ष तक तो वहीं रहे थे गोकुल में महाबल। इसके बाद में 5 वर्ष के होंगे, 4 वर्ष के होंगे, वैसे सब बच्चे बच्चे गुड़िया गुड़िया जैसे खेलते हैं। अभी पूर्वराग भी नहीं है, पूर्वराग से पूर्व की बात ये, अभी प्रीति जोड़नी आरंभ हुई तब तो फिर पीछे से पूर्वराग होगा, अभी अनुराग हो रहा है धीरे धीरे। सभी एक साथ में खेलते हैं, कभी घरौंदा बनाते हैं, कभी कृष्ण उसको तोड़ देते हैं, कहीं राधा रानी कृष्ण का घरौंदा तोड़ देती है, कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, इसलिए उनके खेलने का नाम है
खेलन बन।
ना? किंतु है ये शेखर गोप जो कृष्ण के रिलेटिव है उन्हीं के का ये नित्य निवास स्थान है, और यहाँ पर ये लोग सब आकर के पास में हम लोग गाड़ी जहाज से मुड़ी घूम गई वहीं पर, उसको कहते हैं गोपी घाट। वो गोपी घाट गोपियां वहीं पर स्नान करती थी, पनघट पर वहीं पर आती थी, वहीं पर पीछे से एक बार जबकि जटला कुटना ने लांछन लगाया, अरे ये तो कृष्ण के साथ में इधर उधर घूमती है, इसका आचरण ठीक नहीं है। तो एक दिन कृष्ण ने उनका सतीत्व सिद्ध करने के लिए राधिका जी का एक कौशल रचा, योग माया ने उनका सहयोग किया और कृष्ण को कुछ हो गया, जानबूझ कर लिया, और ऐसा कर लिया कि उनको ऐसे वो फीट हो गए, मूर्छित हो गए, अब उठ नहीं पा रहे। उस समय में योग माया ने कहा कि भाई यदि कोई इसको प्राण देता तो ये बच जाएगा, कैसे होगा, मैं इसको अभी ठीक कर दूंगी, किंतु यहां पर गोपी घाट है, वहां से कोई पानी ले आए घड़े में और मैं कृष्ण को स्नान करा दूंगी तो ये उठ जाएगा, किंतु घड़ा कैसा होना चाहिए, उसमें सहस्त्र छिद होना चाहिए। तो सहस्त्र छिद वाला घड़ा मंगाया, का जो कोई ब्रज में साथी नारी होगी वो पानी भर करके ले आए और इसको स्नान मैं कराऊंगा मंत्र से तब कृष्ण उठ जाएगा। तो उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, ब्रज में यदि कोई सबसे पतिव्रता है तो कौन है, कुटिला,
कुटिला
कुटिला सबसे पतिव्रता है, इसलिए कुटिला को बुला लाओ और वो पानी लाए। जैसे वो तो वो बड़ी अकड़ करके सीना तांती हुई वो घड़ा ले लिया, किंतु घड़ा देते ही ये सहस्त्र छिद है, छाती धड़कने लगी, यदि पानी नहीं आया तो तब मैं पतिव्रता हूं, वो जागतिक पति को ही अपना पति मानने में पतिव्रता समझती है, किंतु जगत के लोग नहीं समझते कि इस पतिव्रता का कोई मूल्य नहीं है। जो परम पति हैं कृष्ण ही यदि पति हैं, इनके उनको छोड़ भी दिया जाए तो वो पतिव्रता पतिव्रता है और ये पतिव्रता का कोई मूल्य नहीं। इसलिए वो तो अकड़ करके गई लाने के लिए, पतिव्रता के बल पर हम ले आएंगे। जब घड़ा डुबाया और घड़ा उठाया, उठाते एक सेकंड के अंदर में समस्त पानी हजारों छिद्रों से वो गिर गया। फिर वहां से लौटी नहीं, वहीं से किसी प्रकार से जमुना पार करके उधर जा करके और किसी प्रकार से वहां चली गई, जाट में भाग गई आई। अरे भाई वो आई नहीं, क्या बात है, उसकी बेटी को बुलाओ। तो वो बड़ी अपने को पतिव्रता कहती है, तो जटिला की पुत्री राधा जी की ननद कुटिला,
कोई तो कुटिला है, कुटिला तो पहले आई।
हम जो कह रहे
हैं
तो कुटिला को बुलाया, कुटिला आई और उसने भी घड़ा डुबाया और पानी लिया तो पानी नहीं आया, सब गिर गया। अब ब्रज में कोई तैयार ही नहीं हो जो पानी लाए, बहुत चेष्टा की गई किंतु कोई नहीं तैयार। अंत में उन्होंने कहा कि देखो वो वृषभानी जी की लाडली जो बेटी है उसको यदि किसी प्रकार से लाओ और वो यदि तैयार हो तो होगा, किंतु वो आएगा जब मैं घर से निकली हूं नहीं, हमको तो यही बदनाम करते हैं, मैं नहीं कहा जा सकती। अब अंत में यशोदा जी को पड़ा वो गरज, यशोदा जी आई और सब सखियां आई आकर के इनको मनाया, जटिला तो थी नहीं और कुटिला तो उधर में मुख छिपा करके भाग गई है। बड़ी कहानी सुनने के बाद में, बड़ी मनावत करने के बाद में तब राधा जी आई और राधा जी ने घड़े में डुबाया और कहा कि आज यमुना जी और स्वयं कृष्ण हमारी लाज रखें, और डुबाया और पूरा सिर पर ले लिया और एक बूंद भी पानी नहीं निकला, और ले आकर के वहां पर सभा स्थल में लाई और सब लोग जय जयकार करने लगे।
श्रीमती नदी का
सब जय जयकार, पतिव्रता यदि ब्रज में है तो कौन है, केवल बस एक यही विश्वभानु की लाडली जी है, बस एक ही पतिव्रता, कोई दूसरी पतिव्रता ही नहीं। सखियों को बड़ा आनंद हुआ, दूसरे लोगों का मुख मलिन हो गया। अब तब से अब ये अकड़ करके नहीं बोलती थी राधा जी से, और इन्होंने जोग माया ने चारों तरफ में डोरा पिटवा दिया, ब्रज में ही यदि कोई पतिव्रता है तो पानी देते ही कृष्ण के ऊपर में और कृष्ण एकदम उठ गए। इस तरह से कृष्ण ने उनकी पतिव्रता का स्थापन किया। वो स्थान वही नंदघाट है, खेलन बन है, यहाँ पर और भी क्रीड़ा कौतुके हुआ करती थी। वहां से हम लोग यहाँ पर नंद रामघाट में आए। रामघाट की कथा आपको संक्षेप में श्रीमान शुभानंद जी ने बतलाया। यहीं पर बलदेव जी ने राज किया था और यमुना जी को हल से खींच करके जो उधर से जा रही थी, हमने दिखलाना भूल गया, वो ऐसे जा रही थी और उन्होंने ऐसे खींच करके यहाँ पर ले आए। यहाँ पर एक यही प्रश्न होता है, जो कृष्ण की प्रियाएं क्या बलदेव जी के साथ नाराज करती थीं?
इसका समाधान दो प्रकार से किया है हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे टीकाकारों ने। पहला तो ये जब बलदेव जी की भी अलग से प्रियाएं थी और कृष्ण की प्रियाएं थी अलग, बलदेव जी की बहुत सीमित। उन्होंने ये कहा जैसे यहां पर वो सबका प्रश्न ही नहीं है, वो रास का। यहां तो विरह में जो तड़प रही थी गोपियां, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय उन्होंने किए। उसमें से एक उपाय था नित्य करके और भुला दी। किंतु जब वो रास इत्यादि करने लगे तो गोपियों को कृष्ण की स्मृति आने लगी। जो जो काम भूलने के लिए कृष्ण को करते हैं, नंद जी आते हैं नंद घाट में कृष्ण को भूलने के लिए, और यहां पर देखते हैं कि वही पनघट, वही सब चीजें, वही कृष्ण का स्थान, कृष्ण के पैरों की छा, बस और बिलख बिलक करके रोते हैं। गोवर्धन में जाते हैं कृष्ण को भूलने के लिए और उनकी स्मृति आती है, इसलिए गोपियों की स्मृति और कृष्ण की होने लगी। यहां तक कि बलदेव जी ने और गोपियों ने, गोपियों को उस समय बलदेव जी से नहीं बोलना चाहिए, किंतु लिखा जैसे उनसे हंस करके बातें की और सब किया बड़ा प्रीति के साथ। किस लिए? उनको होश नहीं है, वो तो एकदम कृष्ण के विरह में पागल सी है। कैसे इनसे बातचीत करना चाहिए? अब जेठा का और क्या होता है बहु का ये कोई संबंध वहां पर रह नहीं गया, उसे अतीत हो गए गोपियां सभी, और उनसे कृष्ण से कितने ताना मार रही हैं। जो ब्रह्म ज्ञान उनके साथ में दिया आपको भी वही सिखलाया। एक किंतु बात यहां है, सिद्धांत की बात। बलदेव जी एक बरस तक कृष्ण के प्रभाव को नहीं जान सके, माया को। कब?
गोवर्धन
धारण कर नहीं समझ सके। जब उस लीला को ही नहीं समझ सके, कृष्ण की माया ने उनको मोहित कर दिया, तो बलदेव जी के लिए क्या करेंगे? कृष्ण बलदेव जी नहीं समझ पा रहे हैं जैसे ये कृष्ण क्यों गया ब्रज को छोड़ करके और क्यों नहीं आ रहा। गया तो गया, एक बार आता, रास्ते में कुरुक्षेत्र कहां जा रहा है, कुरुक्षेत्र और दिल्ली हस्तिनापुर कहां का, एक बार यहां पर आ जाता। अरे यहां पर आकर रहता कुछ दिन, नहीं रहता तो आकर के चला जाए, छोड़ क्यों दिया? उनके समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं कौन? एकमात्र कृष्ण ही समझते हैं और कोई दूसरा नहीं समझता। निकट रहने से गोपियों को इतना बढ़ जाता है विरह, भावी विरह के लिए तड़पने लगती हैं, और जब कृष्ण से दूर रहती हैं तब उसके विरह में इतनी तन्मय हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि कृष्ण तो यही है। उनसे बातचीत करती हैं, बड़े खाती हैं पीती हैं, एक तमाल वृक्ष को दे करके कृष्ण समझ करके उसे बातचीत करती हैं, आलिंगन करती हैं, और कृष्ण जब निकट बैठते हैं तो विरह में एकदम से कहां कृष्ण, कृष्ण से पूछती है, कृष्ण कृष्ण कहां कृष्ण है, कहां कृष्ण, ऐसे भाव में विभोर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने देखा कि हमारे निकट रहने से इनको विरह का दुख होता है, उसका मैं प्रश्न नहीं कर सकता, इसलिए हमको दूर ही रहना चाहिए जब विरह में भी मिलन उनका हो। बलदेव प्रभु जी इसको नहीं समझ पा रहे थे और कृष्ण समझा नहीं पाते थे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी किसी को समझाना चाहे किंतु वो कह नहीं सकता अपने विरह की बातें। ऐसे ठीक कृष्ण की बात थी, सब समझते हैं, सब कुछ है किंतु कह नहीं सकते, बलदेव से भी नहीं कह सकते। इसलिए बलदेव आए सांत्वना देने के लिए, किंतु वो सांत्वना नहीं हो सकी, अंत में खींच करके यहां से गए। गोपियां ऐसे मर रही है, तड़प रही है, और कृष्ण को देखने के लिए, सांत्वना देने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए वो गए। जैसे मैं प्रतिज्ञा किया मैं जाऊंगा, जरूर उनको लेकर के आऊंगा यहां, इसलिए बलदेव जी फिर पीछे दो महीने के बाद ही चले गए। किंतु कृष्ण वैसे ही फिर जो गांव भुला दिया, नहीं आए। आए कब? आए तंत्र मंत्र के वक्त के समय में, वो भी भागवत के अनुसार में नहीं बल्कि और दूसरे पद्म प्राणी इत्यादि के अनुसार। हमारे गोस्वामी लोग अत्यंत विरह नहीं चाहते हैं कि सब समय विरह हो, इसलिए दोनों को मिलाया पीछे से जीव उन्होंने रूप गोस्वामी ने। विरहांत नहीं होना चाहिए, विलनांत होना चाहिए, इसलिए जैसे तैसे द्वारका की लीला की रचना करके
ललित माधव और विदग्ध माधव, और उन दोनों को किसी प्रकार से मिलाया, किंतु भक्तों को संतना नहीं मिली। हमारी राधा जी कभी नहीं जा सकती हैं द्वारका, कृष्ण बल्कि यहां रहे, तो वो सब स्थान है। बलदेव जी कृपा करें ये हम लोग भक्ति में प्रवेश कर सके, उनकी करुणा को हम लोग समझ सके, बस इसलिए हम लोग आए हैं बलदेव जी की कृपा लाभ करने की। बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, अब तो रास्ता हो गया और सब लोगों ने सीख लिया, पहले कोई नहीं आता था, हम ही लोग पहले यहाँ पर आना आरम्भ किया, धीरे 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 सभी लोग आने लगे। हम लोग पहले आए थे आज से गुरु जी के साथ में 1900 कितने में 54 से भी पहले, उस समय कोई रास्ता घाट कुछ नहीं था, किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से पैदल 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 का रास्ता है। मुंजा कभी पासी में ये सब स्थान, कभी भांडी बट उधर, कभी इधर, इधर भी हम लोग आज चलेंगे। इसके बाद में अभी हम लोग बिहार बन चलेंगे, और बिहार बन से फिर दर्शन करके हम लोग अक्षय वन, गोपी
तपोवन,
तपोवन, और इसके बाद में बोलो बलदेव प्रभु की राशस्थली की जय, गौ प्रेमानंदे।
पासी में बिहारी कुंड, बिहार कुंड, और ये बिहार वन बहुत ही सुंदर वन है, इसमें अभी भी मोर, हिरण, कोयल, ये सब कुहकते रहते हैं, विचरण करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, देखेंगे मोर लोग सब बोलना आरंभ कर देंगे। एक बार हम लोग आए थे तो एक साथ में सब बोलने लगे मोर, के का सब बोलने लग गए। अब यहाँ पर कृष्ण ने बिहार किया था, ये कृष्ण की लीला स्थली है, वहाँ पर राम घाट में राम बलदेव जी का, और यहाँ पर कृष्ण का बिहार स्थली है। यहीं से ये बीच का स्थल है, यहाँ पर जमुना जी पासी में नीचे में बह रही हैं, यहीं से जमुना जी की धारा उधर से देखा वो मुड़ करके फिर इधर में चली गई। अब इधर से वृंदावन होती हुई अटखेलिया करती हुई और चली गई हैं मथुरा की तरफ में, ब्रज को चारों तरफ से घेर करके ब्रज से मानो निकलना नहीं चाहती हैं, ऐसी ये जमुना जी है। उसी के किनारे अभी रामघाट गए थे, अब उसी के किनारे फिर यहाँ पर आएंगे, अब इसी के किनारे हम तपोवन में जाएंगे, अक्षय बट जमुना के किनारे, और फिर हम जाएंगे चिरघाट में, तो वहाँ पर ही जमुना जी मिलेंगे, फिर वहाँ से बस बन जाएंगे, वहाँ पर भी जमुना जी मिलेंगे, फिर वृंदावन में ये मिलेंगी, फिर बेलबन में यही मिलेंगी। चारों तरफ से ये घेर करते हैं जमुना जी, जमुना जी को निकाल दिया जाए तो वृंदावन रहेगा ही नहीं।
यहाँ
सुषुम्ना नाड़ी चारों तरफ में घूमती रहती है। तो ये बिहार वन है, कृष्ण ने गोपियों के साथ में यहाँ पर बिहार किया था, सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए आते थे, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अभी वल्लभाचार्य के नहीं तटीय स्थान वृंदावन में उन लोगों का स्थान यहाँ पर है, बहुत काल से यहाँ पर सेवा हो रही है, गो सेवा होती है यहाँ पर, और लोग भजन करते हैं यहाँ। और भजन क्या करते हैं हम तो नहीं जानते, तो गो सेवा इत्यादि तो करते ही हैं, और निर्जन में इन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किंतु मुख्य स्थान है कृष्ण का गोचारण का, और सबसे अधिक स्थान है बिहार का। चलो बिहार बन की, चलिए एक मिनट बैठ करके वहाँ पर यहाँ की चर्चा करें। दो चार पैसे, 10 पैसे जरूर प्रणामी देंगे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे, भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां, स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां, वदामि राधाम् करुणाभराद्रं, ततो मम नास्ति गतिर्नकार। हम लोग अभी बिहार वन में आए हुए हैं, सचमुच में ये बिहारी वन है। अभी दृश्यमान
प्रकाश,
प्रकाश में यदि ऐसा सुंदर दिखता है तो जिस समय प्रकट होकर के कृष्ण यहाँ पर विहार करते होंगे गोपियों के साथ में, सखाओं के साथ में गोचारण करते आए होंगे, अब इसे करके सखाओं को भी दर दर हटाकर यहाँ गोपियों के साथ में कदम्ब खंडी में रासस्थली में रास करते होंगे, ये रासस्थली है, उस समय की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। वृंदावन में हम रासस्थली देखते हैं बंसीवट, किंतु वहां पर ये सब दृश्य नहीं है, वहां पर शहर हो गया है, बिजली की चका चौंद हो गई है, पासी में सेवा कुंज है, सेवा कुंज तो अभी कुछ कुछ है किंतु ऐसा सजीव नहीं है, वहां पर मोर नहीं है, मोर और मोरनिया लाखों लाखों यहां पर जैसे, वहां पर नहीं है, जैसे यहां पर गायें देखते नहीं, हजारों हजारों गायें यहां पर अभी तो शायद चरने के लिए चली गई हैं, उनके बछड़े फुदक रहे हैं देख रहे हैं। वृंदावन में ये नहीं, न सेवा कुंज में होगा न बंसीवट में, दृश्यमान स्थिति में ये नहीं है, मधुबन में भी नहीं है, वहां पर कुंज तो है किंतु कैसे कुंज, ठूठे अब हो गए हैं, कृष्ण के विरह में तड़फ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पेड़ों पर लताएं हैं, यहाँ पर कमाल वृक्ष है और उस पर लता चढ़ रही है, बड़ी उत्फुल्ल होकर के मयूर उस पर केका करते हैं, कोयले कुहू कुहू करते हैं, न जाने क्यों अभी आप लोगों को देख करके मोर आप लोगों का स्वागत नहीं कर रहे, नहीं तो नहीं तो हजारों हजार मोर एक साथ में बोलने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, विशेष करके बरसात के दिनों में जब मेघ हो जाता है और ये देखिए काली काली ये सब पेड़ों की छाया में और जरा काला हो जाता है तो अपने आप मयूर अपने पंखों को उठा करके और नृत्य करने लगते हैं। यहाँ का वृंदावन में करीब करीब सब वन कट रहे हैं, कट गए, अब थोड़ा सा कहीं कहीं है वृंदावन में देखने के लिए, एक स्मृति के लिए निधुवन और सेवा कुंज है, और तो सब वहां का खत्म हो गया। वनों में जहां हम सुनते थे अच्छे अच्छे जब वन थे वो सब लोगों ने काट दिए, विशेष रूप से राजनीति के वजह से सब ये अंतर ध्यान हो गए, यही बचे खुचे हैं यहाँ पर देख रहे हैं। हम अभी गए थे कुहांडीर वन में, वहां पर थोड़ा सा है किंतु वो भी ऐसा नहीं है, अभी ब्रजवासियों ने और ये कहां पर महात्मा जी बैठे हुए हैं इन लोगों ने अभी कुछ रखा है, नहीं तो इसको भी जोत काट करके खत्म कर देते। हम लोग आते हैं तो वृंदावन की स्मृति होती है, मयूर नाचते हैं, कोयल भक्ति है, तितली देखिए सब नाच रही हैं, खुल रही हैं, कैसे कैसे ये तमाल वृक्ष अभी भी कदम्ब खंडी यहाँ पर है, अभी भी बिहार बिहार कुंड है, बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, सब अप्राकृत दृश्य है। तो जिस समय कृष्ण होंगे उस समय में क्या स्थिति है, यहाँ पर शरद ऋतु एक साथ में वर्तमान रहती थी, सब समय बसंत ऋतु छाई रहती थी, मधुमास छाया रहता था, इसे बलदेव जी वहां पर आए निकट में ही, निकट में राम घाट में हम जहाँ पर गए थे, यहाँ की कथा आप लोगों को हमने बतलाई। एक बार हम लोग आ रहे थे, आते आते करीब करीब शाम को ना सवेरे सवेरे इसी समय में आए थे हम लोग, तो हम लोग ये छोटे वन में भी उस समय में और भी घना था, तो हम लोग थोड़ा सा रास्ता जैसे आप लोग भूल गए, यहाँ से एक मिनट का रास्ता था, वहां से नहीं आकर के आप लोग उधर से आए, तो वैसे हम लोग भूल गए, तो हम लोग वन में भीतर में घुस गए इसमें, और कांटे लग रहे हैं उन्हें, कांटे छोड़ नहीं रहे, मरु चारों तरफ में इधर उधर भाग रहे हैं, और पूर्व दृश्य हम समझते कि यहाँ पर हिरण भी कभी कभी आते होंगे, हिरणिया भी अभी आती होंगी, और कहीं ब्रज में देखे जाते हैं, सब अंत ध्यान होता चला जाए, कुछ दिन एक ऐसा आएगा जबकि ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, किंतु अभी हम लोग का परम सौभाग्य है जो ब्रज की अभी थातियां अभी भी कुछ हम लोगों के प्रेरणा के लिए उद्दीपना के लिए अभी ये सब अभी चीजें हैं। मुझे तो यहाँ जब आता हूँ मुझे सचमुच में ब्रज की स्मृति होती है और भावों की उद्दीपना होती है, जो चीज चाहिए कृष्ण के, अभी जो कीर्तन किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का,
राधा कुंड तट,
राधा कुंड तट
कुंज कुटी,
कुंड कुटी, वो भी कीर्तन अभी सुन रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर सभी चीजें हैं,
बोलते स्वागत कर,
जैसे आप लोग आप हरी कथा कहिए जब भी आते हैं, ये सब चीजें और कहीं भी दुर्लभ है, कहीं भी जाएंगे ये सब, ये जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें कृष्ण छोड़ करके कहाँ चले गए, ये कह रहे हैं गोपियां, हमें छोड़ करके कहाँ चली गई, अब उनके विरह में ये तड़प करके के और क्या कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं देखते हैं, उनके साथ में उनकी ताल पर नाच नहीं रहे हैं। वृंदावनम वो वितनी प्रकृति जब देव की सुतम पदाम जो लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमत्त मयूर अनित्यम प्रक्षात्रिशान अवर्तानी समस्त सस्तम। जब यहाँ पर कृष्ण जब बंसी गान करते थे, बंसी पर गान करते थे, उस समय मयूर थिरक करके नृत्य करते थे बड़े ताल और स्वर के साथ में, और उस समय में जितने पशु पक्षी हैं सब मौन होकर के पेड़ की शाखाओं पर बैठ करके और दर्शन करते थे और आंख बंद कर देते थे, पेड़ पर रहते। गोपिया कहते अहो बताम विहंगा मुनयो बनस्मिन, अरे ये वृंदावन, वृंदावन के ये जो पशु पक्षी हैं ये साधारण मौनी मुनि जैसे लग रहे हैं, आंख बंद करके और बंसी ध्वनि सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, मयूरों का नृत्य देख रहे हैं, ये साधारण नहीं है, ये कैसे हैं? यहाँ के वृंदावन के जो पक्षी हैं वो साधारण मुनि नहीं है, ये वेद कल्प लता की एक मधुर डाली निकली है शाखा, वो उसका नाम है प्रेम, उस पर बैठी हुई है ये, अब बैठ करके कोयल कुहू कुहू कर रही है, मैंने राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम ले रही है, और मयूर उन्हीं पर नाच रहे हैं, ये नाचने वाले ऋषि हैं, मौन रहने वाले यहाँ के वृंदावन के ये सब पशु पक्षी नहीं है, कैसे हैं? कृष्ण नाम का सब समय राधा नाम का कीर्तन करने वाले हैं और नित्य करने वाले हैं, दोनों हाथ से हरि बोल हरि बोल हरि बोल इस प्रकार से कर राधे राधे का करके नित्य करते हैं ये सब। इसलिए मयूर कोयल सूक और सारी ये वृंदावन की हैं, ये प्रेम की डाली पर बैठकर कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो ज्ञान के निम्ब रूपी वृक्ष के ऊपर में ज्ञान की डाली पर बैठे हैं वो वृंदावन में नहीं आते, वो वृंदावन से बहुत दूर, वो शाखा चली गई है काशी में और एक किसी चली गई हरिद्वार में, वो वहां पर रहते हैं, वो लोग यहाँ नहीं वो प्रवेश कर सकते, कृष्ण को देख करके भी ध्यान लगाएंगे, नित्य और गीत नहीं करेंगे, किंतु वृंदावन के ये सब है। तो इसलिए वृंदावनम सखी भो विंतनोत कीर्ति, विश्व की कीर्ति को उज्जवल कर रहा है कौन, ये वृंदावन क्यों कर रहा है, यहाँ पर कि कृष्ण बंसी ध्वनि करते हुए और राम के साथ में यहाँ पर गोचारण करने के लिए आते हैं, कैसे आते हैं, गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, और उसमें जो अनु जो छोटा है जो पीछे चल रहा है और जो छोटा है अनु वो कौन है, श्याम, उसके मुख से बंसी निकलती है ध्वनि और मंद मंद मुस्कुरा करके अपनी कटाक्षों से किसी दूसरे को देख रहा है, श्रीमती राधिका जी के तरफ में, उस समय आंखों का फल यही एकमात्र है जो उसका दर्शन करे और उसका कीर्तन सुने, और आंखों का फल हम नहीं जानते हैं जब क्या है, अक्षणताम फलमिदम न परम विदाम, आंखों का फल इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है उसी बिहार मन में हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्राकृतिक सीनरी देख रहे हैं, आप लोगों को इसीलिए लाया ये आप लोग दर्शन करें और कृष्ण लीला की स्मृति हो और कृष्ण भजन में रुचि हो आप लोगों की, कृष्ण के भजन में भी वैसे तैसी रुचि नहीं, गोपियों की भाव को लेने की और उस प्रकार से कृष्ण को रिझाने की चेष्टा होनी चाहिए जिसको कृष्ण स्वयं रिझाते हैं। ऐसी गोपियों का भाव विश्व में इससे बढ़ करके और नहीं है। इसलिए यहाँ सब स्थलों का भाव दे करके ही सुखदेव गोस्वामी ने उद्धव के माध्यम से बतलाया, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुमाफिक संसार। गोपियों की चरण धूलि की वंदना की है, हम लोग उसी के लिए लालसा से आए हैं। आप लोग यहाँ पर गोपियों की चरण की धूलि इस बिहार वन में जरूर फैला अभी भी है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। आज हम लोग धन्य है इस स्थान में आकर के, आप पेड़ों की जड़ ये सब साक्षी हैं कृष्ण के बिहार के लीला के। ये कदम्ब वृक्ष है यहाँ पर पासी में, ये तमाल वृक्ष है, ये सब देख रहे हैं, ये लता पता गुल्म नहीं है। जब किंचित तीर्ण गुल्म की कट मुखम गोष्ठे समस्तंगी तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम परम शास्त्रे रे मुहुर् मुहुर् निशंकितं जंच्या ब्रह्मा वेर पिशस्पी हम तो सर्वम मया इदम। यहाँ के जितने तरु वृक्ष लता गुल्म यहाँ तक कि सांप कीकट बिच्छू मच्छर जो कुछ है सब लीला के अनुकरण है, अनुकूल है कृष्ण के, सब कृष्ण की उद्दीपना कराते हैं। इसलिए हम लोग आए जो इनका दर्शन स्पर्श इनकी छाया में जाएंगे और हम लोगों का जीवन धन्य उठेगा, हमारे कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होगी, इसलिए आए हैं। आप लोग यहाँ की धूलि अपने सिरों पर लगा करके और प्रणाम करके फिर चले। मेरी तो इच्छा थी जैसे कुछ और यहाँ पर बोलता, किंतु बहुत विलम्ब, एक डेढ़ घंटा हमारा बस विलम्ब हो गया, इसलिए हमारा समय बहुत कुछ निकल गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे शेरगढ़ होते हुए, जैसे कान शेखरगढ़, शेरगढ़ नहीं ख उसमें से निकल गया है, ब्रजवासी लोग जल्दी से उच्चारण कर लेते हैं नहीं? इसलिए वो शेरगढ़ और शेरगढ़ नहीं शेखरगढ़, वहीं पर गोपी घाट है जहाँ पर कि मैंने गोपी घाट की बातें बतलाई। वहाँ पर और भी बहुत से मदन मोहन गोविंद जी मंदिर है, पारसी में उजानी है, ये सब छोड़ करके हम लोग आए हैं। अब यहाँ से हम लोग चल करके और अक्षय वट चलेंगे, गोपी तपस्या का स्थल तपोवन चलेंगे, वहाँ से चीर घाट में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद पाकर के स्नान करके विश्राम करें, इसलिए वहीं पर हम लोग स्नान करते। बोलो बिहार वन की, बोलो बिहार वन की, बोलो बिहार वन की जय। गौ प्रणाम जगह है या और रहे, किंतु कीर्तन में ढिलाई मत आना चाहिए, जिस दिन ढिलाई देखेंगे नहीं। ये स्थान है अक्षय वट, किसी कोई कोई लोग इसको भांडीर वट भी कहते हैं और अधिकांश लोग इसको अक्षय वट कहते हैं। यहाँ आने से अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल क्या है? भक्ति ही, कृष्ण भक्ति ही अक्षय फल है, बाकी सब क्षय फल है, सब रह जाएगा जगत में। किंतु लोगों को विश्वास नहीं होता, क्षय फल के लिए ही सब लोग तरसते हैं और सबको अपने तरफ में इधर में खींचते हैं। अक्षय फल के लिए कोई तैयार नहीं होता और अपने प्रिय व्यक्तियों को अक्षय फल के लिए लगाने में गड़बड़ हो जाती है। तो ये अक्षय वट वृक्ष है। यहाँ पर इस ग्राम का नाम है कसरौट, कसरौट माने कसरत,
कसरत
कसरत कसरत से कसरौट माने सखा लोग कसरत करते थे इस वट वृक्ष के नीचे, अखाड़ा था उनका, पहलवानी करते थे। श्रीमती राधिका जी ने, ललिता जी ने कहा, सखा हमने सुना है आप तो कहते हैं कि मैंने सबको हरा दिया, हम सारे जैसा कोई बलवान, किंतु प्रभु आपको श्री राम ने कितनी बार हराया है, आपकी नाक ऊपर में कितनी कितनी बार हुई है। और सिदाम ने, मधुमंगल ने और सखाओं ने आपकी पीठ को अखाड़े में छुआ दिया, ये कितनी बार हुआ? हमने सुना है आप तो बड़ी बड़ी दीघ हाँकते हैं, किंतु हमने सुना है जो सुबल ने आपको पछाड़ दिया। किसने कहा जे ये कौन आपसे कह दिया? मैंने तो बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ दिया। सखा लोग हमारे सामने क्या आएंगे, मैंने सुबाल को सिद्धाम को सबको हमने पछाड़ दिया है, तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने सुना जा सब समय हारे हैं, यदि जीते हैं तो आज आप अपनी कसरत दिखलाइए, अपनी पहलवानी दिखलाइए। हम लोग अखाड़े में एक पहलवान को उतार रहे हैं, आप भी उतर आइए। तो कृष्ण कौन सा पहलवान है, तो आप पहले उतारिए। तो जब कृष्ण जी अखाड़े में लगन पान करके उतर गए, तो सखियों ने श्रीमती राधिका जी को पहलवान बना करके और उनको उतार दिया। और कुश्ती दंगल हुई और राधा जी ने कृष्ण को यहीं पर पछाड़ करके उनकी पीठ को लगा दिया और कृष्ण हार गए। किंतु हार करके भी कृष्ण जीते और जीत करके भी राधिका जी हार गई। यहाँ हारने में आनंद है, जीत है, और जीतने में हार है। इसमें ये प्रेम ही प्रेम नदिया की बहे,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे
धार, उल्टी बहे धार, सभी उल्टी ही बातें हैं। तो यहाँ पर हार करके भी जीतना और जीत करके भी, ये कसरौट ग्राम है, यहीं पर ये अक्षय वट है। जिस समय गोपियां इधर में रहती थी तो यहाँ से पास ही में यमुना के किनारे ये तपोवन है और पास ही में यहाँ पर चीर घाट है। उस समय ये कसरौट गांव के पास ही में गांव था, वहां पर नंद बाबा इत्यादि रहते थे और श्रीमती राधिका जी के पिताजी विष्णुभानु महाराज भी गोपों को लेकर के पास में रहते थे किसी गांव में। और गोपियां यहाँ से नदी है निकट ही, यहीं पास जो दिखता है वो पे यहीं पर तपोवन है यमुना के किनारे। तप करती थी रात में 4 बजे गंगा के यमुना के किनारे में आ जाती, कृष्ण का कीर्तन करती हुई आती और वहां से एक साथ में जाती वहां कात्यायनी जी का जहां स्थान है, ये तपोवन है और वो कात्यायनी का स्थान चीर घाट है। एक महीने तक व्रत किया था कठोर व्रत, सवेरे में कौन महीने में,
अग्रहण महीने,
अग्रहण महीने में जिस दिन हम लोग का व्रत पूरा गया उससे लेकर के एक महीने तक, उसमें खूब जोर से सर्दी और ठंड रहती है उसी समय में। और वहां पर जाकर के और वहीं पर कात्यायनी जी की पूजा करती थी, शायद तपोवन इसीलिए कहा गया, यहीं पर स्नान करके तब वहां पर कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती थी। तो वो तपोवन है और वहां पर तीर घाट है। हम लोग आप लोग यदि कहें तो वो जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर है तपोवन, वहां पर चलेंगे। अनेक तो यमुना के किनारे हम लोग जाएंगे वहां, वहीं पर तीर घाट में हम लोग दर्शन कर लेंगे। यहां जाने में बहुत विलंब होगा, प्राय 11 बज गया है, इसलिए यहीं से हम लोग चलिए दर्शन करेंगे। और यहां की कथा तो यही है, किंतु बहुत विस्तृत है ये सब चीजें। एक ही तरह की लीला मैंने कहा, 11 प्रकार की लीलाएं हुई होंगी यहाँ पर। कृष्ण गोचारण करने के लिए भी यहाँ पर आते थे और ये सब गांव में अभी भी ब्रज की रीतियां नीतियां ये सब पहले जैसी ही है। मथुरा वृंदावन तो करीब शहर हो गया, किंतु यहाँ पर ये सब चीजें सुरक्षित है। और गोपियां भी यहाँ से जाती है वहां पर स्नान करने के लिए तपोवन में। बहुत से महात्मा लोग वहां पर रहते थे, अब बहुत कम महात्मा लोग रहते हैं। गौड़ीय वैष्णव लोग विशेष करके इन सब स्थानों में भजन करते थे, एकदम निर्जन स्थान में रहने में रह करके करते थे। तो अब स्थान तो प्राय सुना पड़ा हुआ है, 2-4 कभी कभी साधु आ जाते हैं। अभी चिरघाट में गांव है, क्या नहीं जाने गांव का नाम है, श्यारो या क्या नाम है, सेहरा नाम का नाम है। अभी आप लोग यदि कहें तो मैं चलूंगा, किंतु 1 माइल जाना 1 माइल आना होगा, अब जरा दूर है, अनेक तो धूप हो गई है। चलिए यहाँ का दर्शन हम लोग वहीं पर स्नान करेंगे, वहीं पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे, विश्राम करके तब फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग,
परिक्रमा कोई नई चीज नहीं है।
अनादि काल से ये ब्रजधाम उनकी लीलाओं को देख करके श्रवण करके नए नए साधकों के हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा होती है। श्रुतियों को भी इसमें लोभ हुआ और 60,000 दंडकारण्य ऋषियों को भी लोभ हुआ, जो गोपियों ने जैसे कृष्ण के साथ में रह करके उनका भजन किया था, हम लोग भी उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। उन लोगों ने रास किया था, रास के द्वारा कृष्ण को तृप्त किया था, हम लोग भी वैसे ही कर सके। जगदीश जी सोइए मत, जाइए पीछे खड़े हो जाइए। तो वैसे एक ही नहीं, जूत के जूत अकेले साधक भी, जैसे अभी भी हो सकता है कि कृष्ण की लीलाओं को सुनकर के किसी को लोभ उत्पन्न हो जाए कि हम गोपियों की भांति कृष्ण की सेवा कर सके, राधा जी की सेवा कर सके। इसलिए बहुत दिनों से जो लोग आराधना कर रहे थे, कोई एक कल्प, कोई दो कल्प, कोई 10 कल्प से जोग बया ने किसी लोगों को योग्य देख करके और गोपियों के गर्भ से यहाँ पर जन्म दिलाया। वो लोग जनकपुर की राजकुमारी आदि हैं, 60,000 दंडकारण्य निवासी भी हो सकते हैं, इसके बाद भी जूथ के रूप में, अजूथ के रूप में, एक अकेले रूप में कोटि कोटि वर्षों से जो साधन कर रहे हैं इस भाव से, काम गायत्री और गोपाल मंत्र जप रहे हैं, वो लोग इसमें जन्म लिया गोपी के रूप में। और जब वो छोटी छोटी थीं, तो ब्रज का या सब जगह नियम है, यदि वर्षा नहीं होगी शंकर पर, अभी मथुरा में देखते हैं हम लोग के मठ के सामने से गाना गाती हुई जाती
है। बच्चे
हटाओ के पास जानती नहीं है, ये शादी किसको कहते हैं, विवाह किसको कहते हैं, नहीं जानती है। तुम्हारे भाई बंधु की ऐसे ऐसे लोग हैं, यहाँ की बालिकाएं भी, यही नहीं सर्वत्र ही भारतवर्ष की ऐसी रीति है। हम लोग आए एकांत में नगर से बाहर, तो यहाँ पर भी जुट गए। यदि गड़बड़ होगा तो हम लोग चलेंगे जमुना के किनारे, वहीं पर कहेंगे। अच्छा, तो ये बालिकाओं का स्वयं नहीं जानती हैं ये विवाह किसको कहते हैं, और सभी बचपन से ही अच्छे पति की खोज में और शंकर की, दुर्गा जी की, कात्यायनी की, वो उमा की, ये सब करते हैं। तो रुक्मिणी जब छोटी थी तभी से उमा की पूजा करती थी, सुनते हैं सीता जी भी पूजा करती थी बचपन से ही,
माँ इतनी बलवती है।
तो इस तरह से उनकी पूजा पहले से ही ये प्रचलित है। तो वो गोपियां जो गोपियों के गर्भ से जन्मी थी, वो लोग बचपन से ही पूर्व जन्म का संस्कार और इस जन्म में गोपियों को देख करके, नित्य सिद्धाओं को देख करके, वो लोग बचपन से ही कात्यायनी जी की आराधना करती थी। यहीं पर कात्यायनी जी हैं, आसपास के गांवों से, यहाँ के गांवों से भी सब छोटी छोटी कुंवारी लड़कियां, कोई 2 वर्ष की 3 वर्ष की 4 वर्ष की 5 वर्ष की 6 वर्ष की 8 वर्ष की, और जब तक शादी नहीं हुई है 12 वर्ष के बाद में शादी हो जाती थी, और वो शादी पक्की होती थी। आजकल 30 वर्ष में जो शादी होती है कच्ची होती है। फिर उनकी शादी करनी पड़, वो शादी अपने करना नहीं पड़ता, वो अपने आप
लव मैरिज,
कोर्ट मैरिज या जैसे तैसे हो जाते, और फिर दूसरे को छोड़ करके पांचवे की यहाँ भी लड़के और लड़की दोनों का। और पहले 12 वर्ष की उम्र में जो बागदान हो जाता था वो एक जीवन क्या 10 जीवन तक वो चलता था, ऐसा पक्का होता था, उनका संस्कार ऐसा जमता था। तो बच्चियां यहां पर आती और एक महीने तक अपने अपने गांव से आकर के यहां पर यमुना में स्नान करती। वही ये वृक्ष है, वही यमुना जी हैं। कभी उधर में चली जाती हैं, कभी इधर में, अभी कुछ ऊपर में हैं। जब एक बार हम लोग आए थे तो बाढ़ आई थी तो यमुना जी इधर थी, और एक बार दो बार उधर में चली जाती है, किंतु रहेंगी यहीं पर। विशेष करके वो जो गोपी
तपोवन
वहां से तो हटती ही नहीं है, एकदम किनारे रहती है। तो यहाँ पर एक महीने तक आराधना की, प्रतिदिन स्नान करके, पवित्र होकर के, कपड़े बदल करके, और धूप दीप शंख जल इस प्रकार से सरसोपचार से भोग राग नैवेद्य करती थी। अभी तो प्रस्तरमय मूर्ति यहाँ है, पहले बालू की मूर्ति बना लेती और पेड़ के नीचे रख देती और वहीं पर उनकी पूजा करती कात्यायनी के रूप में, और कहती क्या, कात्यायनी महामाये जोगिन्नधीश्वरी
महाजोगिन्नधीश्वरी
नंदगोपसुतम देवी
पति
में कुरुते नमः। वो जानती नहीं थी ये पति किसको कहते हैं,
उपपति में
विवाह किसको कहते हैं, किंतु बचपन से ऐसा करती थी। यदि वो जानती और गोपियों का संग हुआ होता तो पति न कह करके और दूसरा शब्द कोई प्रयोग करती,
उपपुत्र
प्रियतम शब्द का प्रयोग करती या और कुछ करती। इसलिए जब 29 दिन हो गए, 30वें दिन सब छोटी छोटी बालिकाओं ने, उस समय की जो विवाहिता स्त्रियां भी थीं, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, वो भी कुआरी के समान ही रहती हैं, ललिता विशाखा चित्रा श्रीमती राधिका और
चंपकलता
इंदु लेखा
रंग देवी सुदेवी
और विपक्ष वाली
पद्मा
चंद्रावली सभ्या भद्रा कुंदलता, ये सब एक वर्ष के अंदर में विवाह हुआ, जिनको बच्चा नहीं उसको भी उसी रूप में रख लेते हैं, तो वो भी उनको निमंत्रण आज किया की हल
पिंबड़ा
बागे से छे
पिंबड़ा का पिंबड़ा
तो उनको निमंत्रण किया, काजी आज ये आ जाएंगी तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। इसलिए अंतिम दिन में पूर्णिमा के दिन में जब पूर्णिमा आई सब गोपियों को निमंत्रण किया, उसमें ललिता विशाखा राधा जी जिनका नाम लिया वो सभी लोग यहाँ पर आ गए, और यहीं पर यमुना जी इस घाट में थी, कपड़े यहीं पर रख दिए बाल स्वभाव से, और सब नदी में स्नान करने के लिए यमुना में गई। 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, और जब स्नान करने लगी तो ठंड भी थी उस समय काफी, ठिठुर भी रही थी तभी स्नान किया बड़ी लालसा के साथ में। इतने में कृष्ण खेलते हुए आए, सुबल सिदाम इत्यादि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो 2.5-3 वर्ष के बच्चों, और लेकर के उनके कपड़ों को सिर में उठवा करके और वृक्ष पर चढ़ गए, वृक्ष की डाली पर। जब गोपियां खूब स्नान कर रही हैं तो देखा जी हमारी तरफ तो देख नहीं रही हैं, तो उन्होंने हो हल्ला करना, जो जो हंसना आरंभ कर दिया, ताली बजाना आरंभ कर दिया। तब तो गोपियों ने देखा रे हमारे कपड़े कहाँ हैं और इस पेपर कौन है, देखा जैसे कनाई है बच्चों के साथ में। तब उनको होश हुआ जी हमारे कपड़े कहाँ, कपड़े देखा तो है नहीं, देखा ऊपर से लाल नील पीले हरे सब कपड़े झूल रहे हैं, देखा जैसे ये तो आज स्वाजी नहीं छोड़ेगा। गोपियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी किंतु आज वस्त्र नहीं दे रहे, तरह तरह की ठिठोली करने लगे, बोले जी तुम लोगों ने अपराध किया है जल देवता के यहाँ, किसी को भी नंगा स्नान नहीं करना चाहिए और भी रात के समय में, इसलिए तुम्हारा अपराध हुआ है, तुम जल देवता से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। अंत में गोपियों ने देखा जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं और वही स्वयं आ गए हैं, और जो कह रहे हैं वो बच्चे सब खेल जैसे खेल में, उसी तरह से उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप जैसा कहेंगे वैसा करें। अंत में गोपियों को निकालने के लिए कहा तो एक सिदाम को और सुबल को उतार दिया, जाकर के उनको पकड़ लाओ गोपियों को। तो वो उतर करके गए
बंदर
कीतने में, सब गोपियां एक साथ में बंदर घुड़की दिया, पकड़ लो इन बदमाशों को। ऐसा घुड़की दिया जैसे वो डर के मारे पहाड़ पर चढ़े गए। थोड़ी देर के बाद में जैसा कृष्ण ने कहा ऐसा हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और अपने अपने कपड़ों को लेकर के चली गई। आराधना की थी कात्यायनी की, किंतु वर किसने दिया? कृष्ण ने। इसलिए हमारे समझ से तो वो कात्यायनी की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण की पूजा है। वही कृष्ण देवता के रूप में आए और कहा जो दो तुम्हारी मनोकामना है अगले रजनियों में
शरद
हम सत पूर्णिमा में तुमको तुम्हारा पूर्ण करेंगे। इस तरह से ये अंतिम दिन उनको क्यों बुलाया उन सखियों को?
व्रत पूरा है,
व्रत पूरा नहीं, उन गोपियों का जो नित्य सिद्धाओं का है उनका संग हो जाएगा। बिना उनके संग के कभी भी वो नित्य सिद्धा में नहीं आएंगी। और उसमें जो रह गई थी या जिन गोपियों को बच्चे थे या कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग था, उनको बंसी बजाने के समय रास के समय में वो नहीं आ सकी, उनके पतियों ने उनको बंद कर दिया और वो तब विरह तीव्रताप में
प्रताप धुतास हुआ
और कृष्ण को भीतर में ले जाकर के अपने हृदय में आलिंगन करके अपने उन भावों को छोड़ दिया और परम शुद्ध होकर के और कृष्ण के यहाँ रास में आगे वो पहुंच गए। इसलिए ये गोपियों के सिद्धि का स्थान है। अभी हम लोग जमुना में उस पार चलेंगे, जिनको स्नान करना है वहां पर स्नान करेंगे और वहां से स्नान करके लौट करके कात्यायनी जी के मंदिर में चलेंगे, वहां पर धूप दीप से उनकी आरती करेंगे और ये मंत्र हम पाठ करेंगे और वहीं पर पुष्प दे करके उनको प्रसन्न करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे जैसे गोपियों की आपने मनोकामना पूर्ण की, हम लोगों के भी मनोकामना पूर्ण की। गौर प्रमानंदे
ज्ञान भूरि भागी के पटम व्याम जलबो
शुभानंद ब्रह्मचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ का बतलाया सब। इसको कहते हैं वत्सवन। वत्सवन किस लिए कहते हैं?
चुप करो।
वत्सवन यहाँ पर एक वत्सासुर था, कंस का चर, उसका नाम था वो दुर्वासा ऋषि इत्यादि की तपस्या में कुछ विघ्न डाला था। उन्होंने उसको अभिसंपात, जाओ तुम यही बनकर के, बछड़ा बनकर के हमारा तपस्या भंग किया, जाओ तुम बछड़े होकर के जाओ। तो उन्होंने जब वो होने लगा बछड़ा तो उनके चरणों में गिर गया, फिर क्षमा मांगा। तो अच्छा ठीक है, बछड़ा होकर के जाएगा, ब्रज में तुम्हारा जन्म होगा और जब कृष्ण प्रकट होंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो वो यहां जन्म लेकर के ब्रज में, और असुर होने पर भी बछड़े का रूप धारण करके योगाभ्यास से और संतों को तंग किया करता है, कृष्ण की को भी तंग करने की चेष्टा करता है। कंस ने उसको कहा जाओ कृष्ण को मारना है। तो उस समय में ही ये सेई और जेई, जेई सेई दो ग्राम है, सेई ये ग्राम है और एक जेई है, दोनों के बीच में ये वत्सवन है। उधर में हमने बतलाया था भांडीर बन के दिन और माट बन के, उधर में बतलाया था जो उधर में मारा था वत्सासुर को और कृष्ण को गोपियां ने स्पर्श कर रही थी, तो पवित्र बनने के लिए उन्होंने वेणु को खोदा और वहां पर स्नान किया तब गोपियों को स्पर्श कर सके। इसलिए पास ही पास में ये वत्सवन है, उधर में भांडीर बन है, उधर में माट बन है,
बहुत दूर नहीं है, बीच में जमुना जी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर बड़े बड़े खादर,
खादर माने गड्ढे जैसे बने हुए जिसमें हजारों हाथी भी डूब जाए, ऐसा पहले भयानक स्थान था ये। अब तो कुछ कुछ सुधार हुआ है, ये मंदिर भी देख रहे हैं, पिछले साल अभी बना है, पहले भी यहाँ आना बड़ा कठिन था, केवल एक चिन्ह थोड़ा सा था, एक छतरी बनी हुई थी। हम लोग यहाँ पर 50 वर्ष पहले आए हैं, उस समय आना बड़ा कठिन था, कांटे कूस सब इधर में भरे पड़े रहते थे, ये बस नहीं था। तो यहीं पर कृष्ण ने वत्सासुर का यहीं पर वध किया था। वो सखाओं में मिलकर के बछड़े बन करके बछड़े में घुस करके सोच रहा था कि कृष्ण के समीप पहुंच जाऊं और कृष्ण को मार डालूं, किंतु उसको सुन करके और बछड़े साथ चकित हो गए, ये बछड़ा नहीं है, उससे दुर्गंध आ रही थी क्योंकि वो मांस भक्षी था। इसलिए कृष्ण बलदेव ने देखा, जब उसको देख करके और बछड़े विदुख क्यों रहे हैं, इसलिए कृष्ण ने इशारा करके बतलाया बलदेव जी को ये बछड़ा नहीं है, ये दुष्ट कोई असुर है, इसे सावधान रहना है। कृष्ण ने ऐसा किया कि उसको मालूम नहीं होने दिया, बछड़ों को प्यार करते करते और गले में ये लोरी ये सब करते करते उस बछड़े के पास में पहुंचे। अब पहुंच करके जो उसने मारना चाहा कृष्ण को, कृष्ण ने उसके पैर पकड़ करके और घुमा करके पटक दिया, वो खत्म हो गया। इसलिए यहां पर ये वत्स बल है। दूसरा इसका कारण ये है, वत्स माने दो होता है, वत्स माने बछड़ा भी होता है और वत्स कहते हैं अरे वत्स इधर आ जाओ। वत्स माने क्या है? बेटा सखा, छोटे लड़कों को वत्स भी वत्स कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने यहीं पर सखाओं को और बछड़ों को यहीं पर लेकर के खादर में लेकर के कहीं बंद कर दिया था और अपने लोक में चले गए। एक वर्ष के बाद में आए, उन्होंने देखा अरे ये तो बछड़ों के साथ में वो एक वर्ष तक यही लीला कर रहा है। अरे जेई जो था ना जिसको हमने देखा था जिन बच्चों को और जिन गाय बछड़ों को, अरे शेई वही 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 तो आया। ये बंगला बोल रहा है?
नहीं नहीं
जय
से बंगला शब्द
है, नहीं हिंदी में भी है जय से, विशेष करके ये ब्रज भाषा है जय से। तो वो से अरे यही तो वही है। उन्होंने देखा जैसे अरे ये कैसे हो गया, तो उन्होंने अपने दो मस्तकों से चार नेत्रों से सामने देखा खादर की तरफ में जहां पर बछड़े छिपे हुए, देखा जी वहां तो सो रहे हैं और इधर चार नेत्रों से और दो सिरों से देखा कृष्ण जी हाथ पर गोचारण कर रहे हैं बछड़ों को और सखाओं को लेकर के। तो उधर में दोनों देख लेंगे एक साथ में देखा अरे जेई से जो इधर देख रहा हूं वो इधर देख रहा हूं। बड़े फाफर में पड़े, बुद्धि उनकी गड़बड़ हो गई। तो जेई ये कह क्या हुआ, ये किसकी माया, हमारे ऊपर में माया है ना हमारी माया उसके ऊपर में है, मेरी माया मैंने चुराया न कि हमसे चुरवाया, ये तो मालूम होता है जो ये किसकी माया से मैं मोहित हो रहा हूं, ये असली बछड़ा जेई न सेई, असल बछड़ा कौन है और बच्चे कौन है, वो असली है न ये असली है, वो नकली है न ये असली है, कोई स्थिर नहीं कर सके। जब बलदेव प्रभु जी नहीं कर सके तो ये ब्रह्मा जी क्या स्थिर करेंगे। बात तो ये हुई ना बपरा हमारे शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने, जो गोपियों की ललक थी कि कृष्ण हमारा बेटा बन जाए, अपनी गोदी में रख करके और उनको हम पालन पोषण, और गाय चाहती थी कि हमारा बछड़ा बन जाए तो हम इनको दूध पिलाए अपने, और छोटी छोटी कुंवारी गोपियां कह रही थी कि हमारा ये पति हो जाए। तो सबकी एक साथ में और भी कितनी बातें होंगी, इन सबको पूर्ण करने के लिए और सखर आस्वादन करने के लिए उन्होंने साथ ही साथ ये ब्रह्मा जी को मोहित करके किया। सर ब्रह्मा जी को ही मोहित क्यों किया, इसलिए कि उन्होंने बतलाया ना ब्रह्मा जी को, ये चतुर्श्लोकी में बतलाया मैं मदम अनुग्रह जैसा मैं हूं, मेरा तत्व है, माया कैसी है, प्रेमा भक्ति कैसी है, वैधि भक्ति कैसी है, कैसे आप वशीभूत होते हैं, आपका तत्व क्या है, तो तुम नहीं जान सकते, मैंने बतलाया तो किंतु तुम नहीं समझ सकते। अच्छा लो मैं अब मन अनुग्रह ऐसे सिर पर हाथ रख ब्रह्मा जी के, मैं तो अनुग्रह तुमको ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे ऊपर में सिर पर हाथ रख रहे हैं। व्यस्त दिव्य दृष्टि से देखा और साथ ही साथ में उनको ये ज्ञान तत्व का ज्ञान हुआ। बिना ऐसी कृपा के तत्व का ज्ञान सहज नहीं होगा। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी तो भक्त ही हैं और कहा था अब उसकी अनुभूति करा रहे हैं कैसे, उनको तो उस समय तत्व का ज्ञान हो गया, अब वो सविशेष कैसे हुआ, ये लीलाओं को दिखला करके उनके अंदर में प्रेम भक्ति के द्वारा इन सब लीलाओं का कैसे अगासुर को मार रहे हैं, कैसे सखाओं के साथ में एक वर्ष तक खेल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सबको एक साथ परिपूर्ण कर, इसलिए ये सेई सेई वत्समन है, सेई वत्समन है जहां पर बछड़ों के रूप में और सखाओं के रूप में खेले कृष्ण, वही सेई है। कौन जेई जो गोलोक ब्रह्म वैकुंठ धाम से ब्रज लोक से जो पधारे वही सेई है, वही कृष्ण है। आप लोग यहाँ पर नतमस्तक होकर के चरण की धूली ले करके
वही हो तब गोचरण तू वही हो तब गोचरण वही जानंत जानंत भूत वही वही हो जित
ওটা তোমরা পড়বো তার
না তোমরা বুঝতে পারবো না।
श्रीधाम जी को गरुड़ बनाया और उनके पीठ पर चढ़ गए और श्रीधाम जी गरुड़ जैसा चलने लग गए। वो लीला किया तो गरुड़ जी देखा जे ये हमारी लीला कर रहे हैं तो ये खुद आ गए।
ये गरुड़ गोविंद लेती है तुम्हारा एक दिग्गज के खाते देखा था
गरुड़ गोविंद की।
एक बात की इच्छा हुई जो मैं ऐसा ही खेल करूंगा जिसमें सिद्धांत को गरुड़ बनाऊं और मैं उनके ऊपर में चढ़ूंगा। इसलिए उन्होंने बैकुंठ की लीला का स्मरण किया। बैकुंठ में नारायण है, वो गरुड़ पर चढ़ते हैं और गरुड़ जी उनको लेकर के घूमते हैं। कभी कभी कृष्ण भी गरुड़ के ऊपर में चढ़ते हैं, रामचंद्र जी भी गरुड़ पर चढ़ते हैं, समस्त विष्णु तत्व ही। किंतु विशेष रूप से ये लोग ये गरुड़ जी नारायण के ही वाहन हैं। इसलिए जब यहाँ ब्रज में गरुड़ नहीं आ सकते, नारायण आ नहीं सकते, उन्होंने लीला का स्मरण करके वैसे ही कृष्ण यहाँ पर ऊपर में बैठ गए और नीचे में श्रीधाम जी को बैठा दिया और उनको गरुड़ जी का आकार धारण करवा दिया। मुखारविंद नीचे ये देख रहे हैं, दोनों हाथों को पंख बना दिया और पैरों को पंजा बना करके और उनके पे चढ़ करके गरुड़ गोविंद की लीला कर रहे हैं। यहाँ पर नारायण नहीं आ सकते, सत्यभामा भी नहीं आ सकती है, यहाँ पर तो सखियां आ सकती हैं। तो ये सखियां हो सकती हैं, राधा ललिता विशाखा इत्यादि हो सकती हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं जानने के वजह से इस लीला को यहाँ पर इस मंदिर में प्रकाशित, किंतु शास्त्रों में गरुड़ गोविंद की लीला इस प्रकार से श्रीधाम को के कंधे पर बैठ करके गरुड़ के रूप में उनको वाहन के रूप में प्रयोग करके ये लीला दिखलाई। सब खरस में गो उच्चारण करते समय में पीछे से नारायण के भक्तों ने इस लीला का आशय नहीं समझ करके सचमुच में नारायण को और लक्ष्मी जी को यहाँ अवतरित करके और गरुड़ यहाँ पर बना दिया। बो श्रीधाम
ये मूर्ति जो है इस तालाब से ही प्रकट है और आप लोगों के जरिए ही मंदिर बना है। हाँ। ये मूर्ति जो है इसी में से प्रकट है तालाब से। हाँ। ये बजरनाथ जी उस समय की मूर्ति बनेगी जो मथुरा वृंदावन में कहीं भी नहीं है। ऐसी मूर्ति ये विश्व में सबसे पहला नंबर है गुरु जी का। और आप लोगों का ही आनंद
आप लोग प्रणाम करके
Okay, let's go.